मैं मरना स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपना वचन झूठा नहीं करूंगा। जो आदमी दृढ़ व्रती है, सत्य वचन वाला है, वचन का पक्का है, उसका प्रभाव समाज पे बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जो बोलते एक दिन एक बोलते, दूसरे दिन दूसरा बोलते और बड़े बड़े वायदा करते और फिर निभाते नहीं है, तो समाज ऐसे नेताओं को गालियां भी भरपेट देती है। इसीलिए राम की नाही सोच विचार कर बोले, वचन देने में जल्दबाजी न करे और निभाने में फिर कभी देर ना करे। कोई न कोई तुम्हारा कोई शुभ कर्म है, चाहे किसी गरीब के आंसू पोंछे हो, चाहे वृद्ध माता पिता की दुआ ली हो, चाहे किसी सच्चे संत के दीदार का पुण्य ही हो, कोई न कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उस अंतर्यामी प्रभु को स्वीकार हुआ है और उसी की रहमत से तुम कथा में आ सके हो। नहीं तो कलयुग में और ब्रह्म ज्ञान की कथा में शांत बैठना दुख। न भगवान ने बनाया है, न प्रकृति ने बनाया है, न भूत प्रेत ने बनाया है। दुख हमारी बेईमानी ने बनाया है, दुख हमारे अज्ञान ने बनाया है, दुख हमने धोखाधड़ी के कारण दुख पैदा किया है।
गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते।
स्वरूप रब में अपने मन को थोड़ा सा विश्रांति पाने दो। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। जहां मौत की दाल नहीं गलती, वह अमर आत्मा तुम्हारा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जहां शोक और चिंता फटक नहीं सकती, वो सुख का साक्षित्व का चैतन्य स्वरूप का खजाना तुम्हारा अंतर आत्मदेव है। भूलिया जभी आपनू तभी हुआ खराब, अपनी महिमा को ये मनुष्य भूला, अपने आत्म स्वभाव को भूला, अपने मुक्त स्वभाव को, अपने सुख स्वभाव को, अपने ईश्वरीय स्वभाव को, अपने ब्रह्म स्वभाव को। जब से ये जीव भूला, तब से बेचारा ये दुखों की उस घानी में पिसता चला गया। कई माताओं के शरीर में लटका और कई पिताओं के शरीर से पटका गया। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। ये प्राणी भव के पास से तभी तक नहीं छुटता, जब तक उस निर्भव का, उस अकाल पुरुष का ज्ञान ध्यान नहीं पाता। जब तक ब्रह्मज्ञानी संत की नूरानी निगाह को हासिल नहीं करता, तब तक ये जीव बिचारा अनाथ होकर कई शरीरों में भटकता रहता है। जीवन भर जिन मकान को, संबंधों को, शरीर को संभाला, मृत्यु के एक झटके ने सारा कुछ छुड़ा दिया, डामाडोल कर दिया। फिर ये जीव बेचारा अनाथ होकर चंद्रमा के किरणों के द्वारा, पानी की बूंदों के द्वारा, अन्न में, फल में, घास पात में स्थित होता है और उससे जीव जंतु मनुष्य प्राणी खाते हैं। फिर वीर्य में स्थित होकर नर के शरीर के द्वारा नारी में, मादा में जाता है, वह मासिक धर्म का खून पीता है। फिर बड़ा हो अथवा तो आधे में एम्बोर्शन होकर टुकड़े टुकड़े करके बेचारे को काट फेंके, अथवा तो माँ के गर्भ में जाते जाते ये जीव बेचारा फिर नाली में बह जाए, कोई पता नहीं। जन्म जन्म पर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावै वास। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के पांचों बालकों की हत्या करने वाले उस अश्वत्थामा को श्री कृष्ण और अर्जुन पकड़ के आए। द्रौपदी, तेरे बालकों की हत्या करने वाला, अब इसका सिर काट दे, तू इसके सिर पर पैर रखकर स्नान करके अपना शोक मिटा। लेकिन भारत की बुद्धिमान, भारत की वह विदुषी नारी कहती है, अभी पुत्र के शोक में एक माँ रो रही है, बाद में दूसरी माँ रोएगी। किसी माँ को रुलाने से मेरे को लाभ क्या होगा, मुच्यताम मुच्यताम छोड़ दो उसे। कृष्ण कहते कि द्रौपदी, तुझ में इतनी समता है तो मैं भी अपनी समता का परिचय देता हूं। पूतना के वध से लेकर षटकासुर, धेनकासुर, अघासुर, कंस और उसके पहलवान और तमाम आततायों का मैंने वध किया, लेकिन मेरा उनके प्रति न राग था न द्वेष था। द्रौपदी, दिखता हूं मैं पांडवों के पक्ष का, लेकिन मेरे हृदय में पांडवों के लिए राग न रहा हो तो, कौरवों के लिए द्वेष न रहा हो तो। मैं संधि दूत होकर गया था युद्ध टालने के लिए, लेकिन अवश्यंभावी युद्ध चल रहा है, मेरे चित्त में कौरवों के लिए द्वेष नहीं हो तो, मेरे चित्त में पांडवों के लिए राग न हो तो। ये मृत बालक परीक्षित, उत्तरा का सपूत परीक्षित, मेरी समता की परीक्षा हेतु जीवित हो जाए। श्री कृष्ण ने अपनी समता का परिचय दिया। जिसके चित्त में समता होती है वो समतत्व को पाने वाला योगेश्वर, संसार के तमाम कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमान, हर्ष शोक जाके नहीं बैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। किसी के लिए आप गांठ मत बांधना, संगी साथी सब स्वप्ने के हैं, मित्र शत्रु सब स्वप्ने में ही है, ये संसार स्वप्ना है, इसे बीतने दो। इसे सच्चा मानकर अपने दिल को दिलभर से वंचित मत करो। न निंदा सच्ची है, न वाहवाही सच्ची है, न रोग सच्चा है, न तंदुरुस्ती सच्ची है, न बाल्यकाल सच्चा है, न जवानी सच्ची है, तो बुढ़ापा सच्चे कैसा। मृत्यु भी सच्ची नहीं है, मिथ्या शरीर का जन्म है, मिथ्या शरीर की मृत्यु है। सत्य तो तुम्हारा वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, उसी को तुम सुनो, उसी को गाओ, उसी को रिझाओ, उसी को पाओ। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि मौत आने के पहले ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा अपने आत्मा परमात्मा की महत्ता को जान ले। मृत्यु आकर गला दबोचे उसके पहले, जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती वहां गोता मारना सीख जाए। जैसे घोर जंगल में आग लगती है तो जंगल के चतुर पशु, अक्कल वाले प्राणी जलाशय में जाकर खड़े हो जाते हैं। जलाशय में आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। ऐसे मृत्यु रूपी आग जब इस शरीर को पकड़े, मृत्यु आकर गला दबोचे उसके पहले अपने इंद्रियों को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को मृत्यु में, जहां देह की मृत्यु हो रही वहां रखते यम में, और यम को पांच भूतों में, पांच भूतों को प्रकृति और महातत्व में, और महातत्व को समेट कर अपने आत्मा में ले आए। मृत्यु तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है फिर भी जीवित है, ऐसे ही देह छूटने के बाद भी ये जीवात्मा अमर परमात्मा के साथ सुख सानिध्य और माधुर्य का एहसास करता है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। संसार की तू तू मैं करके इकट्ठा करके ढिगला बनाकर छोड़ के मरते समय चिंतित होके प्रेत होके मुसोलिन की नाई अथवा अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन की नाई व्हाइट हाउस में भटकने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला। मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा में एक होने के लिए। वे लोग बड़ भागी हैं जिन्हें सत्संग सुनने की रुचि होती है। कोई न कोई तुम्हारा कोई शुभ कर्म है, चाहे किसी गरीब के आंसू पोंछे हो, चाहे वृद्ध माता पिता की दुआ ली हो, चाहे किसी सच्चे संत के दीदार का पुण्य ही हो, कोई न कोई पुण्य कर्म तुम्हारा उस अंतर्यामी प्रभु को स्वीकार हुआ है और उसी की रहमत से तुम कथा में आ सके हो। नहीं तो कलयुग में और ब्रह्म ज्ञान की कथा में शांत बैठना। कोई न कोई ऐसा कोई शुभ कर्म है जो उस परमेश्वर को पसंद पड़ा है, तुम्हारा हृदय उस हृदयेश्वर को पसंद पड़ा है, देर सबेर तुम्हारे हृदय में वो प्रकट होना चाहता है, इसलिए वो अपने सत्संग में, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में तुमको प्रेरित कर पाया है। डॉक्टरों को जो हृदय दिखता है, वो जो धोंकनी जैसा हृदय दिखता है, वो हृदय रहने का स्थान मात्र है। हृदय तो सूक्ष्म है और उसी हृदय से ये हृदय चल रहा है। शुद्ध चैतन्य की संबित हृदय है और वो शुद्ध चैतन्य की संबित जहां जहां होती है वहां वहां जीव की चेतना दिखती है। जहां संबित नहीं हो तो हृदय अप टू डेट होते हुए भी बेकार हो जाता है। ये तो हृदय रहने की जो जगह है उसको हृदय बोल देते हम लोग। ये आंखें तो हैं लेकिन नेत्र तन मात्रा निकल जाए तो आंख होते हुए भी नहीं देख सकते। ऐसे ही कान नाक पांचों इंद्रियां तो सलामत हो लेकिन पंच तन मात्राएं इनमें, इंद्रियों में जो काम करती है वो तन मात्राएं सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर निकल जाता है तो सारा शरीर स्वस्थ होने पर भी नहीं देख पाता है। प्राणमय शरीर का कुछ हिस्सा निद्रा अधीन हो जाता है और कुछ प्राण का हिस्सा चलता रहता है। 10 प्रकार के प्राण माने गए, प्राण अपान व्यान उदान समान कुर्म आदि आदि। लेकिन आप मन को प्राण में, अर्थात मन शांत होगा तो प्राण में वृत्ति ठहरेगी, अथवा प्राण को देखो तो मन शांत होगा। तो मन को प्राण में शांत करे और प्राण को उस परमेश्वर स्वभाव में शांत करे। ऐसा अटकल आ जाए, ऐसा भक्ति का थोड़ा सा स्वाद दिलाने वाला वातावरण मिल जाए तो मनुष्य सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाएगा। जैसे कीचड़ में कमल पैदा होता है, जल में कमल पैदा होता है, जल से न्यारा रहता है, ऐसे ही माया में रहते हुए भी ये जीवात्मा अपने को न्यारा महसूस करेगा। एक दिन भीष्म पितामह को दुर्योधन ने उकसाया कि रोज हमारे कौरव मर रहे, पांडवों का एक भाई भी अभी तक नहीं मरा और आप हमारे सेना नायक हैं, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। बूढ़े को पानी चढ़ा दिया। उस बूढ़े ने 5 बाण निकाले और कल शाम की संध्या के पहले 5 पांडवों को मैं यमपुरी पहुंचा दूंगा, अगर कृष्ण ने हथियार न लिए तो, अगर श्रीखंडी मेरे सामने न आया तो, क्योंकि उसको मैं स्त्री मानता हूँ, अगले जन्म की वो स्त्री था, इस जन्म में मेरा वैरी होकर आया है श्रीखंडी, अंबा अंबिका आदि में से बनकर आया है। भीष्म ने जो कसम खाई तो गुप्तचरों ने पांडवों को बताया कि दुर्योधन ने उकसाया और भीष्म पितामह ने प्रण किया है और वो अष्ट वसु में का एक वसु है, गंगा का पुत्र है, उसका संकल्प अजोड़ है, इच्छा मृत्यु का उसे वरदान है, उसे कोई मार नहीं सकता जब तक वो स्वयं मरना न चाहे। ऐसे भीष्म ने शपथ ली है कि कल शाम का सूरज, ढलता सूरज 5 पांडव नहीं देख पाएंगे, इन 5 बाणों से ही मैं उनको उड़ाऊंगा। पांडवों में चिंता व्याप्त गई और द्रौपदी बिचारी विभल हो गई। द्रौपदी दुखी हुई, दुख हारी, श्री हरि का चिंतन किया और भगवान श्री हरि आए। तुलसीदास ने कहा, दुख के समय आप दुख से पीड़ित मत होना, दुख के समय दुख के भोक्ता मत होना, नहीं तो आप कमजोर हो जाओगे। सुख के समय आप सुख के भोक्ता मत होना, नहीं तो आप रोगी भोगी और खोखले हो जाओगे। सुख का आप सदुपयोग करना, सुख बांटना, और दुख का भी आप सदुपयोग करना, दुख के समय दुख हारी हरि की शरण लेना। बाल गंगाधर तिलक को उनकी पत्नी ने खुशबूदार केसर आम और आपूस आम संवार के दिए। 1-2 फाक खाई, फिर बोला, नौकरानी को दे देना थोड़ा, बच्चों को, पड़ोसी बच्चों को बांट देना। पत्नी ने पूछा, क्यों? आम में सुगंध ही नहीं थी, पौधे बहुत खुशबू थी, मीठे नहीं थे कि गजब के मीठे थे, तो क्या आपको भूख नहीं थी? बोले, भूख भी थी, तो आपको अच्छा नहीं लगा कि अच्छा बहुत लग रहा था, तो खाया क्यों नहीं? बोले, जो सुख देने वाली संसार की चीज है, उसमें अगर ज्यादा सुखी होंगे तो वो रोग का रूप लेगा, सुख बांटने की चीज है, ये मैंने सत्संग से समझा है। तालियां तो बजाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन पंजाब में जो खाने पीने का शौक है, उन लोगों को सावधान होने की भी जरूरत है। जय राम जी की। जितना खान पान का शौक है, उतना अगर प्रभु को पाने का शौक हो तो प्रभु यूं प्रकट हो जाते हैं। खाओ, स्वस्थ रहो, हमारी मना नहीं है, लेकिन शौक तो परमात्मा को पाने का रखो। जो सुखद वस्तु है उसको बांटो तो सुख की लोलुपता चली जाएगी। ऐसा कोई सुख नहीं जो अपने पास दुख को न ले आए, ऐसा कोई संयोग नहीं जो वियोग न लाए, ऐसा कोई जीवन नहीं जो मृत्यु न लाए, ऐसा कोई पद नहीं जहां से रिटायरमेंट न आए, ऐसा कोई मित्र नहीं जिससे बिछड़े नहीं। एक परमात्मा है जहां पूरा जीवन, पूरा ज्ञान और पूरी सुरक्षा है। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक। विपत्ति के समय ब्रह्म विद्या का सहारा लो, सत्संग की विद्या का सहारा लो। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्य वचन, राम भरोसो एक। 5 पांडव विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। द्रौपदी विवल है और भगवान की शरण खोज रही है। श्री हरि का चिंतन करते करते थोड़ी अंतर्मुख हो गई है, मन चिंतन करते प्राण में और प्राण उस परमेश्वरीय आत्मा के निकट गए वही परमात्मा को खींचने का काम शुरू हुआ। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते प्रकट हुए, आ रहे। कृष्ण केशव, तुम्हें पता है भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कल शाम का सूर्यास्त तुम्हारे पांच पांडव नहीं देख पाएंगे। कृष्ण तुम्हें पता है? कृष्ण बोलते हैं अच्छी तरह से पता है। तुम मुस्कुरा रहे हो? कृष्ण बोलते हैं दुख का भोगी नहीं बनना चाहिए, दुख के समय तो अधिक प्रसन्न रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि पर दुख का प्रभाव पड़ेगा, निर्णय गलत आएंगे। शेर क्या करता है? गर्जना करता है और डर के मारे सुरक्षित जगह के प्राणी दौड़ धूप मचाते और शेर का शिकार हो जाते हैं। बड़ा दुखी था, बड़ा चिंता में था, बहुत बड़े भारी दुख में अकबर आ फंसा था। बीरबल ने कहा हंसो, बोले इतना दुख चारों तरफ से मुसीबतें में हंसू, बोले हाँ हंसिए, दुख के भोगी मत बनिए, हंसिए। गुस्से में उसने अंगूठी निकाल कर यमुना में फेंक दी। काफर कहीं का दुख में और हंसिए, मुसीबत में मैं हंसूंगा कैसे? ये अंगूठी यमुना में फेंकी है, 8 दिन के अंदर अंगूठी मेरे उंगली में नहीं पड़ी तो तेरा सिर इसी यमुना में बहा दूंगा काट कर। बीरबल जोरों से हंसा, बोले तुझे डर नहीं लगता मुसीबत का? बोले मुसीबत में ज्यादा खुश रहना चाहिए, यही मुसीबत से जूझने का तरकीब है। मुसीबत तुम्हें दबाए उसके पहले तुम खुशी और प्रसन्नता, ज्ञान और ईश्वर की कृपा लेकर मुसीबत का गला दबोचो। दो पांच दिन बीते और एक मच्छ के, बड़ा मच्छ था, अकबर के पास पहुंचाया गया। मच्छ को काटा गया तो मच्छ के पेट में से वो अंगूठी निकली। बड़ा मच्छ मिला था, ताजुब करते थे इतना बड़ा भारी मच्छ कोई नहीं खरीदता है, अकबर तक पहुंच गया। और मच्छ को अकबर ने अपने सामने कटवाया तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकली। बीरबल को बुलाया कि ये तुमने कैसे कर दिया? बोले मैंने नहीं किया, मैं तो दुख हरी हरी के चिंतन में लग गया, बाकी उसकी माया का चमत्कार है, उसकी करुणा कृपा है। राजगोपालाचार्य 1956 में अकाल पड़ा है, प्रार्थना करते करते शांत हो गए। रेड स्टोन लेक सूख गया है, नगर पालिका ने, नगर अध्यक्ष ध्यान से सुन रही है ना, नगर पालिका ने हाथ मत्थे कर छड़े कि अब टैंकर कब तक कहाँ से मंगाएं, कुओं में पानी सूख गया है। राजगोपालाचार्य ने बीच पर सब लोगों को बुलाकर प्रार्थना की, सुबह 4 से शाम के 4 बजे तक प्रार्थना भजन होता रहा। गदगद कंठ से, सच्चे हृदय से शरणागति होते राजगोपालाचार्य ने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही इंद्र में, तू ही मेघ में, हम तो गुनाहगार हैं, बक्षणहार तू बश्क ले, इन प्राणियों पर तू दया कर, हम पर कृपा कर। प्रार्थना करके वो अपने अपने घर लोग पहुंचे, खाया, रात को सोए, कुछ बादल देखे, लेकिन ऐसे बादल तो रोज आते हैं, क्या हो सकता है, बारिश के दिन तो चले गए, अब क्या हो सकता है। लोग निराश, आबादी निराश होकर सो गए, लेकिन भक्तों ने कभी, भगवान की शरण लेने वालों ने आशा का त्याग नहीं किया, जरूर हमारी प्रार्थना फलेगी। साहस सुकृत सत्य वचन राम भरोसो एक करके सो गए। रात को 2 बजे मूसलधार बरसात, बड़ी बड़ी बूंदों के साथ, महाराज क्या बताएं, ऐसा बरसा, ऐसा बरसा, धमाधम। सुबह 6 होते तो अचानक देखते लोग, रेड स्टोन लेक जो सूख गया था मद्रास का, वो छलो छल ओवरफ्लो हो रहा है, फिर भी वो देने वाला रुकता नहीं, दे धमाधम, दे 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 और दे हो रहा है। 1956 की घटित घटना है, मद्रास में गवर्नमेंट को काले कलूट सड़कों पर नावें चलानी पड़ी, इतना पानी हो गया, ये परमात्मा की लीला है। ईश्वर का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर का सानिध्य नहीं भूलना चाहिए, ईश्वर के साथ आपका बिल्कुल पक्का सच्चा संबंध है, तुम्हारा पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, शरीर के साथ, मकान दुकान के साथ तो माना हुआ संबंध है, मान्यता मन की आती है। मन सो गया तो मकान को पता ही नहीं मैं किसका हूँ, ज्वेलरी को पता ही नहीं मैं किसकी हूँ, और पति पत्नी को भी वो सो गए तो उनको पता नहीं हम किसके हैं, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर को पता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। नींद में भी जिसका संबंध कायम रहता है, मृत्यु के बाद मकान दुकान के संबंध टूट जाते, पति पत्नी के संबंध छूट जाते हैं, सेठ और धन के संबंध टूट जाते, फिर भी जीवात्मा का परमात्मा के साथ का संबंध है। उस संबंध का ज्ञान पालो, उस संबंध से जरा अपना तालमेल जमा लो, आपका तो मंगल होगा, लेकिन आपकी मीठी निगाह जिन पर पड़ेगी उनका भी मंगल होने लगेगा, आपकी वाणी जिनके कानों पर पड़ेगी उनका भी कल्याण होने लगेगा, आप ऐसे पवित्र हो जाओगे। आपका दीदार करने वाले का मंगल होने लगेगा। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, साधारण भाग्य वाले नहीं, बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो तुम्हारा दर्शन कर पाएंगे। आप एक बार ब्रह्मज्ञान पा लीजिए। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी है, साधारण आदमी की दृष्टि से तो उसका काम क्रोध लोभ मोह और जीवत्व के देवस बरसते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की निगाहों से तो ब्रह्म सुख के किरण बरसते हैं, और वो ब्रह्म सुख के किरण समाज को सुख शांति और माधुर्य का दान करने का सामर्थ्य रखते हैं। आपके अंदर ऐसा समर्थ तत्व है। महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी तू डर मत, अभी तो रात है, प्रभात होने दे, प्रभात को तू जाना। भीष्म जब ध्यान से उठते हैं भोर होते होते, तो दुर्योधन की पत्नी प्रणाम करने जाती है, वो आए उसके पहले तू 5 मिनट पहुंच जाना, और प्रणाम करके अपने चूड़ियों का जरा सा झनकार कर देना तो बुड्ढे को पता चले कि प्रणाम हो रहा है, और एज रूटीन बुड्ढा बोलेगा सदा सदा सुहागिन। जब कह दे के सौभाग्यवती भव सदा सुहागिन, तो बोलना कि कल का आपका वचन सत्य होगा कि आज प्रभात का वचन सत्य हो। मैं तो चाहूँगी प्रभात का वचन सत्य हो, बाकी काम मैं काम संभाल लूँगा। द्रौपदी प्रभात को जा रही है, रास्ते में फिर कृष्ण आ मिले हैं कि ठहर द्रौपदी, तेरे पद त्राण जो है, तेरे जो जूते हैं, हो सकता है कि उसके आवाज से वो बूढ़ा सावधान हो जाए, तेरी जूतियां मुझे दे दे। कैसा है वो भारत का भगवान, कैसा है भक्तों का भक्त, भक्त की जूतियां अपने पिंतामर में संभाल रहा है, कितना स्नेह करता है अपने प्यारों को। पिताम्बर में जूतियां ले लिए द्रौपदी की, और द्रौपदी को कहा चल ली जा। द्रौपदी ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को और चूड़ियां हिला दी। भीष्म कहता है सदा सुहागिन, बोले पितामह धन्य हो, आपके मुंह में घी शक्कर, आज का प्रभात का वचन मैं स्वीकार करती हूँ, आप तो सत्य वचन है। बोले अरे द्रौपदी तू यहाँ इस वक्त कैसे, बता तुझे भेजने वाला वो नटखटिया कहाँ है, वो चालबाज चतुर कहाँ है। बोले यहीं कहीं होंगे। अरे केशव कहाँ हो। कृष्ण आए, बोले केशव तुमने क्या कर दिया। बोले जो करना चाहिए वही किया है मैंने, जो होना चाहिए वही हुआ है। केशव मैं प्राण त्यागना कबूल करूंगा, लेकिन मैं वचन अपना त्यागना नहीं कबूल करता। मैं मरना स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपना वचन झूठा नहीं करूंगा। जो आदमी दृढ़ व्रती है, सत्य वचन वाला है, वचन का पक्का है, उसका प्रभाव समाज पे बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जो बोलते एक दिन एक बोलते, दूसरे दिन दूसरा बोलते, और बड़े बड़े वायदा करते और फिर निभाते नहीं है, तो समाज ऐसे नेताओं को गालियां भी भरपेट देती है। इसीलिए राम की नाई सोच विचार कर बोले, वचन देने में जल्दबाजी न करे और निभाने में फिर कभी देर ना करे। मेरे पास सत्संग का प्रोग्राम लेने के लिए लोग आते हैं, अभी भी बैठे होंगे, कल रात को भी आए थे नागपुर के, वो कई बार आए, कई लोग दो दो साल से चक्कर काटते, मैं उनको जल्दी तिथि देता नहीं और दी हुई तिथि को जल्दी से पूरा के बिना मैं रहता नहीं। वचन दे दें और निभाए नहीं तो फिर आपकी वाणी का प्रभाव क्या? मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में भी विश्वास संपादन करना चाहिए। पति को ऐसा विश्वास संपादन करना चाहिए कि पत्नी को तसल्ली रह के रात को 12 बजे भी आ रहा है फिर भी मेरा पति कोई गलत जगह पर नहीं जा सकता, और पति को संतोष होना चाहिए कि मेरी पत्नी भले मायके गई है कि मायके वालों के मित्रों में गई है लेकिन मेरी पत्नी अशुद्ध नहीं हो सकती है। प्रेम के बाप का नाम है विश्वास और विश्वास के बाप का नाम है सच्चाई। दुख न भगवान ने बनाया है, न प्रकृति ने बनाया है, न भूत प्रेत ने बनाया है, दुख हमारी बेईमानी ने बनाया है, दुख हमारे अज्ञान ने बनाया है, दुख हमने धोखाधड़ी के कारण दुख पैदा किया है। बाकी ईश्वर के तरफ से जो हम लोगों को मिला है वो जीवन यापन के लिए बहुत है, सुख पाने के लिए बहुत है, मुक्ति पाने के लिए बहुत है, माधुर्य पाने के लिए बहुत है। परेशान और दुखी होकर पचमरने का कोई ईश्वर ने सामान नहीं बनाया, लेकिन हमने दुर्भावों से, अज्ञानता से, अंधी वासनाओं से प्रेरित होकर संसार को नरक बना दिया है। एक सेठ ने कुआं खुदवाया, गांव के लोग ठंडा पानी, शीतल पानी पिए, मीठा पानी पिए, किसी माई का लोफर लड़का दारू पीकर कुएं में डूब मरा। माई उस सेठ को कोसने लगी कि सेठ तेरा ऐसा हो वैसा हो, तूने कुआं खुदवाया मेरा छोरा मर गया, तू न कुआं खुदवाता तो मेरा छोरा नहीं मरता। सेठ ने उसके छोरे को मारने के लिए कुआं नहीं खुदवाया, सेठ ने तो शीतल जल पीकर प्यास मिटाने के लिए कुआं खुदवाया है। ऐसे ही सेठों का सेठ ने संसार रूपी कूप तुम्हें सुख सामग्री और ज्ञान का अमृत पीकर मुक्ति का रास्ता मिले इसलिए संसार बनाया है। संसार में डूब मरने के लिए उस परम सेठ ने संसार नहीं बनाया है। काम में डूब मरो, क्रोध में डूब मरे, लोभ में डूब मरे, मोह में डूब मरे, अज्ञान में डूब मरे इसलिए संसार नहीं बनाया है, अपितु संसार का सदुपयोग करके उस सत स्वरूप को पालें। आद सत, जुगात सत, है भी सत, नानक होसे भी सत, वो सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। एक पुलिस अफसर रात को गिस्त पर कहीं छापा बप्पा मारकर सुबह सुबह अपने घर पहुंचा, बाथरूम में नहाने गया, खिड़की से देख रहा है कि मेरी पत्नी ने मेरी पैंट में हाथ मारा है। पुलिस ऑफिसर बाहर आया और नोट गिने, अपनी पत्नी को कहता है कि हम पुलिस में काम कर, हम पुलिस ऑफिसर हैं, चोर पकड़ना हम जानते हैं, और हमारे घर में ही हमारी जेब में हाथ मारना और चोरी, और वो चोर दूर नहीं है, तूने ही चोरी की है, मैं तुझ पर चालान कर सकता हूँ, हम चोर पकड़ने में होशियार है। पत्नी मुस्कुराते हुए क्या अजी छोड़ो ये झंझटबाजी, 1000 रुपये दो, 500 की दो नोट पति के हथेली पे रखी, बोले 25% आप ले लो अपना हिस्सा, फिर फरियाद किस बात की, अपना हिस्सा ले लो। जयराम जी बोलना पड़ेगा, जहां से तुम हिस्सा ले आए हो यहां से भी थोड़ा हिस्सा ले लो, और क्या करोगे। नारायण हरि, नारायण हरि। भीष्म कहते हैं कि हे केशव अब मैं क्या करूं। केशव कहते हैं कि उपाय है, तुम्हारा वचन सत्य रहेगा। बोले मैं पांडवों को मारता हूं, पांडवों को 5 बाणों से मारता हूं तभी भी सुबह का मेरा वचन झूठा होता है, अगर पांडवों को नहीं मारता हूं तो कल शाम का वचन झूठा होता है। केशव कहते नहीं नहीं, आपने शर्त रखी थी कि कृष्ण ने हथियार न उठाया तो मैं हथियार उठा लेता हूं, मैं अपना वचन झूठा कर लेता हूं, मेरे भक्त का वचन सत्य हो मुझे आनंद है।